नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्थित कर्तव्य भवन 3 का लोकार्पण किया। आज शाम को एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार समग्र दृष्टिकोण के साथ राष्ट्र का पुनर्निर्माण कर रही है। उन्होंने कहा कि कर्तव्य भवन का निर्माण भारत के वैश्विक दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है।
कर्तव्य भवन की भव्य बिल्डिंग, ये सभी प्रोजेक्ट्स, नए डिफेंस कॉम्प्लेक्स, देश के तमाम बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ये देश को पेस का सबूत तो है ही, ये भारत के वैश्विक विजन का प्रतिबिंब भी है। हम दुनिया को जो विजन दे रहे हैं, भारत खुद उन्हें किस तरह अंगीकार कर रहा है, ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में दिखाई दे रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश कई महत्वपूर्ण बदलावों का साक्षी बना है।
गरीबों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर भी बनाए गए हैं। यहाँ नेशनल वॉर मेमोरियल बना है, पुलिस मेमोरियल बना है, तो देश में 300 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज भी बनाए गए। यहाँ भारत मंडपम बना है, तो देश में 1300 से ज्यादा नए अमृत भारत रेलवे स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं।
इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री ने नए कर्तव्य भवन का निरीक्षण किया और इसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने भवन परिसर में एक पौधा भी लगाया। प्रधानमंत्री ने भवन के निर्माण श्रमिकों की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के लिए उनकी सराहना की और उनसे बातचीत भी की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों के द्वारा हंगामा किए जाने के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने वर्ष 2026 में घरेलू आय पर एक सर्वेक्षण जारी करने की योजना बनाई है। आज लोकसभा में उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व कार्यकारी निदेशक सुरजीत एस भल्ला की अध्यक्षता में एक तकनीकी विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अश्लील सामग्री प्रसारित करने के आरोप में 43 ओटीटी प्लेटफॉर्म को प्रतिबंधित कर दिया गया है। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि इन नियमों के अंतर्गत ओटीटी प्लेटफॉर्म कानून द्वारा प्रतिबंधित किसी ऐसी सामग्री का प्रसारण नहीं करने के लिए बाध्य होंगे। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के आपदा प्रभावित धराली क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियां युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज धराली क्षेत्र का दौरा कर पीड़ित लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अब तक 190 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
जो रेस्क्यू अभियान चल रहा है उसमें मौसम भी एक बड़ी चुनौती है। सेना के लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। सेना के लोग वहां बढ़ चढ़कर आईटीबीपी, बीआरओ और एनडीआरएफ और हमारे राज्य की एसटीआरएफ, सभी आपदा प्रबंधन, जिला प्रशासन, सभी लोग वहां पर अब पहुंच रहे हैं। और कल जब घटना हुई, उस घटना के बाद 190 लोगों वहां पर रेस्क्यू किया गया और वो सभी सुरक्षित हैं। जो हमारे गंगोत्री धाम में तीर्थयात्री हैं उनको भी नेलोंग घाटी की तरफ से निकालने की योजना बन रही है, जल्दी से उनको भी जो है वहां से निकाला जाएगा।
इस बीच सेना ने कहा है कि उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने की घटना के बाद सेना का एक जूनियर कमीशन अधिकारी और 8 जवान अभी भी लापता हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज भारत रूस रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा के लिए रूस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री डोभाल की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वह रूस से भारत की तेल खरीद के कारण भारतीय वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाकर 25% कर देंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज मॉस्को स्थित क्रेमलिन में अमरीकी राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से मुलाकात की। क्रेमलिन के हवाले से रूस की सरकारी मीडिया ने बताया कि यह मुलाकात रचनात्मक और उपयोगी रही और इसमें यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।